हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और वहां जाकर उसने उसे अपने तप से उलझना शुरू कर दिया था। हालांकि उस राक्षस की माँ के अंदर काफी शक्तियां थीं, लेकिन उस वक्त परितारे का ताप काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली उसकी ओर देर तक टिक नहीं पा रही थी। और उस वक्त परितारे के सामने खड़े रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जल्दी ही। अब जैसे ही उस राक्षस की माँ तारापरी ने ये कहा, वो राक्षस की माँ जोरों से हंसने लगी थी और कहने लगी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी मौत नहीं आ सकती है, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब तक मैं नहीं चाहूंगी मेरी मौत नहीं आ सकती। ऐसा कहकर वो हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि मैं आज ही तुम्हारे वंश का अंत कर दूंगी और उसके बाद मैं चैन से सांस लूंगी। अब जैसे ही राक्षस की माँ ने ये कहा, तारा एक पल को थोड़ा सा सहम गई थी, लेकिन अगले ही पल कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि एक माँ के रहते तुम उसकी बेटी की जान ले लोगी? नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वैसे भी अब तुम्हारे बेटे का अंत निकट है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो। और मैं अच्छी तरह से ये भी जानती हूँ कि तुमने आज तक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा हुआ है ताकि तुम मेरा अंत देख सको और मुझे हमेशा के लिए पाताल लोक में या दानवों की दुनिया में कैद हुआ देख सको। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। और इस चक्कर में भले ही मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें कैद तो कर सकती हूँ ना, वो भी परीलोक के पिंजरे में। अब जैसे ही तारापरी ने ये कहा, एक पल को राक्षस की माँ के चेहरे पर डर छा गया था और वो कहने लगी थी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम मुझे कैद नहीं कर सकती हो, चाहे तुम भूल रही हो पर तुम परीलोक से कब की आ चुकी हो। और तुम अगर मुझे कैद करना चाहती हो तो परीलोक के लिए तुम्हें परलोक जाना होगा, और तुम बिना जादुई अंश के परलोक नहीं जा सकती हो। तब तारापरी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, मैं परीलोक नहीं जा सकती तो क्या हुआ, परलोक तो यहाँ आ सकता है। अब जैसे ही तारापरी ने ये कहा, राक्षस की माँ के माथे पर बल पड़ गए थे और अचानक देखते देखते उस कमरे में काफी सारे रंग बिरंगे रोशनियां भर चुकी थीं। रानी परी के साथ साथ कम से कम और भी कितनी ही सारी परियां वहां आ गई थीं, और उन परियों ने वहां जाकर उस राक्षस की माँ को अपनी जादुई छड़ी से परीलोक के पिंजरे में कैद कर दिया था। परीलोक का पिंजरा इतना ज्यादा जादुई था कि राक्षस की माँ परीलोक के पिंजरे में कैद हो गई थी। इसके बारे में राक्षस को कानों कानों तक खबर नहीं लगने वाली थी। तब जल्दी ही वो सारी परियां परीलोक के पिंजरे समेत वहां से गायब हो चुकी थीं। तब तारापरी ने अपनी माँ रानी माँ को गले से लगाते हुए कहा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी माँ, आपने वक्त रहते अगर मुझे राक्षस की माँ के बारे में बताया नहीं होता तो ना जाने क्या से क्या हो जाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी रानी माँ तारापरी के माथे को चूमते हुए कहने लगी थी, जब तक तुम परीलोक में नहीं आ जाती तब तक हमें तुम पर ध्यान रखना ही था, और हमें पूरे यकीन था कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आएगी, इसीलिए हमने अपने कुछ दूतों को तुम्हारे घर के बाहर ही पहरेदारी के लिए रखा हुआ था। और जैसे ही हमारे दूत ने हमें राक्षस की माँ के बारे में बताया तो हम पूरी तरह से हैरान परेशान हो गए थे, इसीलिए मजबूरन हमें सभी परियों को लेकर यहाँ आना पड़ा था। अब जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारापरी की आंखों में अचानक से मोती आ गए थे। तब रानी माँ ने उसके आंसुओं को अपने हाथों पर लेते हुए कहा था, तुम्हें परेशान या रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो खुशियों के दिन आने वाले हैं, बहुत जल्द सब कुछ शांत हो जाएगा और उसके बाद पूरे परीलोक पर तुम्हारा राज्य स्थापित हो जाएगा। तब तारा का दिल अचानक से दुखने लगा था और वो कहने लगी थी, लेकिन अमन अमन का क्या रानी माँ? अब जैसे ही तारापरी ने ये कहा, अचानक रानी माँ भी उदास सी हो गई थी और कहने लगी थी, माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन अमन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अमन परीलोक में नहीं आ सकता है और ना ही तुम ज्यादा पृथ्वी लोक पर रह सकती हो। ऐसा कहकर रानी माँ के लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था, इसीलिए वो वहां से गायब होकर वापस परीलोक चली गई थी। रानी माँ के जाने के बाद तारापरी हाथों पैरों में रह गई थी, क्योंकि अमन के बिना रह पाना उसे अब बहुत ही ज्यादा कठिन सा लगने लगा था, और अभी उसे अमरेंद्र जी को भी ठीक करना था। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी अमन वहां आ गया था। तब तक तारापरी ने जिन अंश को अच्छे से फूलों के रस से नहला दिया था, और नहलाने के बाद उसे बड़े ही खूबसूरत से महारानी वाले कपड़े पहनाए थे, और तारा ने उसके सर पर एक बड़ा ही प्यारा छोटा सा स्टार का मुकुट लगाया था, और उसके हाथ पर एक स्टार का ही कंगन बांधा था जिसमें तराना बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अमन ने अपनी बेटी को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देखा था और उसके माथे को चूमते हुए कहने लगा था, तारा हमारी बेटी कितनी प्यारी है ना। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा अचानक से अमन को गले से लगा लिया था, क्योंकि आज तराना के साथ साथ अमन से तारा भी जुदा हो जाएगी। इसके बारे में उसे कोई एहसास नहीं था, वो तो बस उस वक्त अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी हसीन जिंदगी जीने के सपने देख रहा था। तारापरी ने जल्दी से अमन को गले से लगा लिया था। तारापरी को इस तरह से गले से लगाते हुए देखकर अमन कहने लगा था, क्या बात है तारा, मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार में डुबो रही हैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि सदियों का प्यार आप एक दिन में कर लेना चाहती हैं। क्या हुआ, कहीं आप कहीं छुट्टी पर जाने वाली हैं क्या? अब जैसे ही अमन ने बातों ही बातों में ये कहा, तारा का दिल भर आया था और वो कहने लगी थी, बस मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में आप पहले और आखिरी मर्द हैं। अब आपके बाद ना तो मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना ही कभी कोई मेरी जिंदगी में था। अब जैसे ही तारा ने ये बात कही, अमन हैरान था और कहने लगा था, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ भला, और मैं आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन्नों को कभी भी मौत नहीं आती, हाँ उन्हें सजा के तौर पर कभी कभी अग्नि दुनिया में कैद किया जा सकता है, लेकिन मौत उन्हें नहीं आती। और मैं तो वैसे भी जिन महाराज हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुरा दी थी और कहने लगी थी, मैं जानती हूँ कि आप तराना हमारी बेटी को परीलोक जिन्नातों की दुनिया में लेकर जाने के लिए आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हम दोनों थोड़ी देर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अब जैसे ही तारा ने एक बार फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कहा, अमन हैरान हो गया, लेकिन वो तारा को कभी भी मना नहीं कर सकता था। वैसे भी तारा का खूबसूरत जिस्म तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, तारा के करीब रहकर वो खुद को दूर रख ही नहीं पाता था, तो उसने जल्दी ही तराना को करिश्मा जी के पास भेज दिया था और खुद उसने तारा परी से प्यार करना शुरू कर दिया था। तारा परी एक बार फिर अमन का प्यार पाकर भाव विभोर हो उठी थी, लेकिन इस बार वो ज्यादा देर तक प्यार नहीं कर पाए थे, क्योंकि तराना को जिन्नातों की दुनिया में लेकर जाने का समय आ चुका था। इसीलिए अमन भी जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो चुका था। तभी तारा अमन का हाथ पकड़कर कहने लगी थी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ जिन्नातों की दुनिया में चल सकती हूँ?
क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरी बेटी के अंदर शक्तियाँ कैसे आएंगी। अब जैसे ही तारा परी ने ये कहा, अमन उसकी ओर एक नज़र उठाकर देखता रहा था और अगले ही पल कहने लगा था, आप जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, आप भी हमारे साथ चलेंगी, पर वैसे भी आप जिन महाराज की पत्नी हैं तो आपको रोकने वाला कौन है? अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुरा उठी थी। तारा के मुस्कुराते ही अमन उसकी मुस्कुराहट में पूरी तरह से खो गया था, क्योंकि तारा बहुत ही कम हंसा करती थी, क्योंकि उसे अपनी मुस्कुराहट अपनी हंसी की ताकत का अच्छी तरह से अंदाज़ा था। तारा ने देखा कि जैसे ही अमन उसकी मुस्कुराहट में खो गया है, तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था और जल्दी ही वो नहाने के लिए चली गई थी और बड़े ही खूबसूरत से परिधान में वो तैयार थी। इस बार उसने अपने जिस्म पर परियों के ही कपड़े पहने थे, क्योंकि उसे पता था कि शायद इसके बाद उसे कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से उसने तराना के कपड़े पहने थे, उसी तरह से उसने खुद भी कपड़े पहने थे, और उसने अपने सर पर बड़ा ही खूबसूरत सा स्टार का मुकुट रखा था, जिसे देखकर इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो रहा था कि तारा परी अब बिल्कुल अपने परियों वाले वेश में थी। केवल उसके पीछे परी के पंख और साथ ही साथ हाथ में जादुई छड़ी की कमी थी। वो जल्दी ही जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, तो अमन बेहद खोया हुआ देखता रहा था, और अचानक अमन उसके करीब गया था और उसके करीब जाकर कहने लगा था, पहले तो तुम मुझे कहती आई थी कि तुम एक परी हो, शायद तुम उस वक्त मजाक कर रही थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे सचमुच में ऐसा लग रहा है कि वाकई तुम एक परी ही हो। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी प्यारी तारा। ऐसा कहकर उसने करिश्मा जी के सामने ही तारा परी के हाथों को चूम लिया था, और तारा परी थोड़ा सा शर्मा गई थी। तभी करिश्मा जी कहने लगी थी, बेटा अपने पिता को भी साथ लो और जल्दी ही जिन्नातों की दुनिया में चलो। जिन्नातों की दुनिया में जिन रक्षक का इंतजार हो रहा है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, सभी ग्रामीणों ने जल्दी ही सबको गायब होने का मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया था, और जल्दी ही वो लोग जिन्नातों की दुनिया में पहुंच चुके थे। और जैसे ही तारा परी अपनी बेटी के साथ जिन्नातों की दुनिया में गई, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने जिन्नातों की दुनिया पहले भी देखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी, लेकिन आज तो जिन्नंश आने की खुशी में बड़ी ही खूबसूरत तरीके से एकदम जन्नत की तरह से जिन्नातों की दुनिया को सजाया गया था। अब तो तारा परी बेहद खुश थी, हर जगह बड़ी ही खूबसूरत और सुगंधित सी खुशबू आ रही थी। जितने भी जिन जिनके कुरूप रूप थे, उन सभी ने इंसानों के बड़े ही खूबसूरत से रूप लिए थे, और सभी एक से बढ़कर एक परिधानों में वहां खड़े हुए थे। तारा परी को सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो जिन्नातों की दुनिया की जगह परीलोक में आ गई हो। उसे वहां की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा प्रसन्नित कर रही थी। जल्दी ही एक बड़े ही खूबसूरत से फूलों से सजे हुए झूले में तराना को यानी जिन्नंश को लिटाया गया था, और उसके बाद एक बड़े ही लंबे कद का आदमी और औरत वहां आए थे। वो आदमी और औरत वही थे जिन्होंने एक बार अमन को पिशाच योनि से बचाया था। वो उस जिन्नातों की दुनिया के सबसे नेक जिन थे, जिन्होंने आज तक कोई भी गुनाह नहीं किया था। उन जिन्नातों ने वहां जाकर अमन के हाथों में एक बड़ी ही चमचमाती हुई सुनहरी रंग की तलवार थमा दी थी। अब तो तारापरी पूरी तरह से डरने लगी थी कि अमन ये सुनहरी तलवार का क्या करने वाला है और जिन्नंश की शक्तियों का सुनहरी तलवार से क्या लेना देना। लेकिन अमरेंद्र जी मूर्छित अवस्था में वहीं पड़े हुए थे, साथ ही साथ करिश्मा जी भी वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। शायद उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन तारापरी वहीं थी। कहीं न कहीं उसे ये लग रहा था कि उसकी बेटी पर जान का खतरा है। और तभी जैसे ही अमन सुनहरी तलवार को लेकर जिन्नंश की ओर बढ़ने लगा, तारापरी का सब्र का बांध टूट गया था और वो सीधा अमन के सामने जाकर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, अमन सर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप इस तरह से मेरे जिन्नंश की जान नहीं ले सकते हैं।